जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी राधा माधव जयो कुंज जयो राधा माधव जया कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जया गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हो नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा
सब लोग प्रणाम करें।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरियस द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। आप लोग और आगे आ जाएं, जो दूर बैठे हैं वो आगे आ जाइए, और इधर पुरुष हैं इधर देवियां, बीच में रास्ता बनाइए। देवियां इधर आएंगे, पुरुष इधर, और सब लोग आगे आइए, कृपा करके आगे आइए सब लोग। सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं करेगा, सबको इशारा करिए चुप रहने का। सब लोग मेरे पीछे बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्लोक ले रहे हैं श्रीमद् भागवत का। आज सवेरे इसी श्लोक पर चर्चा हुई थी, आज सवेरे 8 बजे इसी श्लोक पर चर्चा हुई थी। यहाँ पर कोई है जो सवेरे की कक्षा में थे, सवेरे 8 बजे हाथ उठाइए, कोई था? आप हैं, ठीक है। अगर दोबारा भी श्लोक होता है तो भी आप लोग सुनिए, क्योंकि ये चर्चा ऐसी है कि जितने बार करें उतना ही रस मिलता है, ठीक है। जैसे चंदन की लकड़ी को जितना घिसते हैं उतना और सुगंध हो निकलती है, उसी प्रकार से सवेरे आपने अगर इस श्लोक पर प्रवचन सुना है तो दोबारा सुनने में भी और नया रस मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे पीछे बोलिए, लिखा है श्लोक, सा देव की सर्व जगन्निवास, निवास भूता नित राम नरे जे, भोजेन्द्र गेहेग्नि सिखे विरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, सा देव की सर्व जगन्निवास, निवास भूता नित राम नरे जे, भोजेन्द्र गेहेग्नि सिखे विरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले सथा सती, सा देव की सर्व जगन्निवास, निवास भूता नित राम नरे जे, भोजेन्द्र गेहेग्नि सिखे विरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। किसी को बोलना है बोलिए, बोलो।
सा देव की सर्व जगत निवास, निवास भूता नित राम नरे जे,
अब एक बार वो माताएं बोलिए,
सा देव की सर्व जगन्निवास,
शब्दार्थ बोलिए, सा देव की, वह देव की देवी, सर्व जगत निवास, सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान का निवास भूता, देवकी की कुक्षी, देवकी की कुक्षी अब निवास बनी हुई है, नितराम विस्तार से, नहीं रेजे प्रकाशमान हुआ, भोजेंद्र गेहे कंस के घर की चार दीवारी के भीतर, अग्नि शिखा इव आग की लपटों के समान, रुद्धा ढकी हुई सरस्वती विद्या, ज्ञान खले ज्ञान खल नामक व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति में जो ज्ञान होने पर भी उसको विद्रत नहीं करता, यथा जिस तरह सती होकर भी, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। तो श्लोक को समझे, देव की माता के गर्भ में कृष्ण है, तो यहां बताया गया है सा देव की, वो जो देव की माता है, सर्व जगन निवास निवास भूता, वो निवास बन गई किनकी, जो समस्त जगत के निवास हैं, जिनमें समस्त जगत निवास करता है वो भगवान की निवास बन गई माता देव की, है ना। तो माता देव तो कितनी बड़ी ये घटना है, कितनी बड़ी घटना है, कितना बड़ा समाचार है कि माता देव की के गर्भ में वो भगवान निवास कर रहे हैं जिनके उदर में समस्त जगत निवास करता है, इतनी बड़ी घटना। लेकिन नितराम नरेजे, लेकिन तो भी कोई शोभा नहीं हो रही, कोई शोभा नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि वो बंद है कहाँ पर, भोजेंद्र गे है, भोज भोज वंशियों का जो इंद्र है यानी राजा है, भोज वंशियों का राजा कौन है, कंस है ना, भोजेंद्र के है, भोज वंशियों का राजा कंस, उसके घर में रुद्धा, रुद्धा माने बंद है, माता देवकी को कोई दर्शन नहीं कर पा रहा है। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि माता देवकी का कोई दर्शन नहीं कर पा रहा है जो उन भगवान का निवास बन गई है जिन भगवान के अंदर संपूर्ण जगत है। तो ये जो है, मतलब इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा समाचार, इन किसी को पता नहीं चल रहा है, तो ये बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है ना, और शोभा नहीं हो रही माता देवकी की, शोभा नहीं हो रही है ना। अग्नि शिखे विरुद्धा, जैसे अग्नि की शिखा, अग्नि की लपटें, खूब लपटें निकल रही हैं, तो कितना उसमें गर्मी होती है, प्रकाश होता है, लेकिन किसी दीवार के अंदर जो है, चार दीवारी के अंदर वो बंद हो तो किसी को दर्शन ही नहीं होगा अग्नि शिखा। तो माता देवकी के शरीर से ऐसी प्रकाश निकल रहा है, दसों दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है, लेकिन उनका कुछ भी प्रकाश किसी को नहीं मिल रहा, कोई माता देवकी का दर्शन नहीं कर पा रहा है। जैसे अग्नि की शिखा लपटें लेकिन बंद हो किसी बर्तन के अंदर, घड़े के अंदर बंद हो, तो किसी को भी प्रकाश और उसकी गर्मी का लाभ नहीं होगा, है ना। अग्नि शिखे विरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथास्थिति, जैसे ज्ञान खल में सरस्वती हो, सरस्वती माने ज्ञान, तो ज्ञान खल का मतलब है जिसके पास ज्ञान है लेकिन वो दूसरों को नहीं देना चाहता, तो उसे क्या कहा जाता है, ज्ञान खल, खल का मतलब दुष्ट, तो उसकी निंदा की जाती है। उसके पास ज्ञान है लेकिन दूसरों को ज्ञान नहीं दे रहा है, तो वो क्या है? ज्ञान खल। तो ज्ञान खल के अंदर ज्ञान है लेकिन उसकी शोभा नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को दे नहीं रहा है ना। तो ये जो है दो उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, परीक्षित महाराज को ये कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की, जिसमें दो उदाहरण दिए हैं कि माता देवकी जो है कंस के कारागार में जो बंद हैं, तो कंस कितना दुष्ट है, कंस कितना दुष्ट है, है कि वो माता देवकी जो है संपूर्ण जगत के निवास भगवान की भी निवास बन गई है, लेकिन तो भी लोग जो है माता देवकी का दर्शन नहीं कर सकते हैं। हाँ, देवता लोग दर्शन करते थे, स्तुति करते, प्रार्थना करते थे, वो तो देवताओं का काम है। देवता लोग तो आ सकते हैं कंस के कारागार में भी, आकाश मार्ग से आ सकते हैं, उनको तो कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन मनुष्यों में तो कुछ किसी को दर्शन नहीं हो रहा है माता देवकी का। तो इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं, अग्निशिखा अगर बंद हो चारों दीवारों से तो उसकी शोभा नहीं होती, कोई दर्शन नहीं कर सकता। और दूसरा उदाहरण क्या दिया है, दूसरा उदाहरण क्या है, ज्ञान खल। ज्ञान खल के अंदर ज्ञान जो होता है वो भी अग्नि के समान प्रकाश कर रहा है, लेकिन वो दूसरों को नहीं दे रहा है, है ना। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत अच्छा जो है ये विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस समय जो समय चल रहा है पुस्तक वितरण का चल रहा है, प्रभुपाद की पुस्तकों के वितरण का चल रहा है, इसलिए सवेरे इस श्लोक पर प्रवचन हुआ था और अभी भी हम इसी श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए प्रभुपाद के तात्पर्य को। इस श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान खल ये निंदा का शब्द है, किसी के पास ज्ञान है दूसरों को ज्ञान नहीं देता है तो उसे क्या कहेंगे, ज्ञान खल, बहुत दुष्ट। खल का मतलब दुष्ट है ना। तो ज्ञान खल, ज्ञान तो वितरण के लिए होता है, यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी विज्ञानियों या दार्शनिकों को कोई नया ज्ञान सोचता है तो वे उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं, है कि नहीं। वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को कुछ भी ज्ञान सूचित होता है तुरंत वितरण करते हैं, पूरी दुनिया फैलाते हैं। आजकल तो मीडिया भी है और समाचार पत्र हैं, और फिर जो स्कूल और कॉलेजों की किताबें हैं उनमें भी वो ज्ञान आ जाता है, विद्यार्थियों को भी वो ज्ञान दिया जाता है। तो ये तो जो है मतलब उनका काम है, नया ज्ञान सूचता है, अन्यथा वो ज्ञान क्रमशः सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास भगवत गीता का ज्ञान है, तो प्रभुपाद उसी प्रकार से बता रहे हैं कि भारत के पास कौन सा ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भगवत ज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं हो पाया, यद्यपि ये सारे मानव समाज के निमित्त है। गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है वो संपूर्ण मानव समाज के लिए है ना। भगवान ने ये नहीं कहा है कि ये गीता जो है मैं जो उपदेश दे रहा हूँ ये केवल भारतवासियों के लिए है, भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान जब कहते हैं कि अहम बीज प्रधा पिता, कि मैं सब जीवों को जो है बीज देने वाला पिता हूँ, है ना, तो भगवान ने थोड़ी कहा कि मैं केवल भारतवासियों का पिता हूँ या मैं केवल हिंदुओं का पिता हूँ, है ना। तो गीता में भगवान समस्त जीवों का पिता हूँ, तो समस्त जीवों में भी जो मनुष्य हैं वे ही समझ सकते हैं, इस ज्ञान को ले सकते हैं। मनुष्य जीवन में उनके पास ये बुद्धि मिली तो कम से कम मनुष्य में तो प्रत्येक मनुष्य को ये ज्ञान दिया जाए, और भारत के बाहर इस ज्ञान को क्यों ना फैलाया जाए। तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि उनका जो ज्ञान है, वैज्ञानिकों का जो ज्ञान है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है मनुष्य जीवन के लिए, और उनका ज्ञान बदलता रहता है, उनकी खोजें बदलती रहती हैं, लेकिन तो भी पूरी दुनिया में वो अपने समाचार को फैलाते हैं, सही हो गलत हो जो भी ज्ञान हो वो पूरी दुनिया में फैलाते हैं। जैसे अमेरिका में वो जो है चंद्रमा में चले गए, चंद्रमा में गए तो तुरंत पूरी दुनिया में समाचार फैल गया भी चंद्रमा में चले गए, बाद में पता चला चंद्रमा में नहीं गए तो वो अलग बात है, है ना। लेकिन कोई भी ज्ञान हो सही हो गलत हो वो जो है पूरी दुनिया में फैलाते हैं, फिर जो बदलता है तो उसको भी फैलाते हैं कि अब बदल गया, अब वो जो सूचना पहले दी गई थी वो सही नहीं थी, अब दूसरी सूचना मिली तो वो फैलाते हैं, तो बदल करके भी ज्ञान फैला रहे हैं, है ना। जब वे लोग जो है ऐसे ज्ञान को जिसका कि महत्व नहीं है वो फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ये जो भगवद्गीता का ज्ञान जो कभी नहीं बदलता, ये ज्ञान को क्यों ना फैलाएं हम लोग, हम भारतवासियों के लिए ये जो है क्यों नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान को फैलाएं। तो प्रभुपाल लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश, ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है ना। तो कैसे दुर्भाग्य की बात है, कंस जैसे देवकी को उसने अपने कारागार में बंद कर दिया है, तो वो क्या है, दुष्ट है। उसी प्रकार से हम भी अगर भारत की सीमाओं के अंदर इस ज्ञान को बंद रखना चाहते हैं भगवद गीता को, तो हम भी क्या हैं उसी तरह खल, ज्ञान खल है। जैसे कंस ने जो है देवकी को बंद कर दिया अपने कारागार के अंदर, तो उसको कहेंगे देवकी खल, देवकी को बंद कर दिया। जिसके पास ज्ञान है और ज्ञान दूसरों को नहीं देता है तो ज्ञान खल, तो कंस को कहेंगे देवकी खल, देवकी को उसने बंद कर दिया, है ना। उसी प्रकार से हम भी अगर भगवद गीता के ज्ञान को भारत के बाहर नहीं देना चाहते हैं, तो हम भी क्या हैं, भगवद गीता खल, हम भी भगवद गीता खल है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वे भगवद गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में लें। चैतन्य महाप्रभु ने जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए हर एक को उपदेश दो, इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो, तो आप फिर खल नहीं कहलाएंगे, तो फिर आप जो है ज्ञान खल नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर आपके पास भगवद गीता यथारूप है, प्रभुपाद की गीता है, और आप इससे संतुष्ट हो गए कि भाई मेरे पास तो है और मुझे जीवन का पूरा लाभ मिल गया, अच्छी बात है, ये भी अच्छा, आप अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा लाभ हो गया, मुझे प्रभुपाद की गीता मिल गई, मुझे भगवान का असली संदेश मिल गया है, मुझे जो है बहुत बड़ा लाभ हुआ, तो ये बड़ी प्रशंसा की बात है। लेकिन साथ साथ निंदा की भी बात है, अगर आप दूसरों को नहीं देते तो दूसरे दृष्टि से आप क्या हो गए, खल भी हो गए कि दूसरों को नहीं दे रहे हैं आप। अगर आपके संपर्क में और भी लोग हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं भाई इनका भी कुछ लाभ हो, उनके प्रति भी आपकी सहानुभूति है, और जो है अच्छी भावना है, हित की भावना है, आप हित करना चाहते हैं और उनको आप नहीं पहुंचा रहे गीता की पुस्तक, तो आप फिर क्या कहलाएंगे, आप भी क्या कहलाएंगे, ज्ञान खल, आप भी ज्ञान खल कहलाएंगे, है ना। तो दोनों बातें हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने जो गीता ले ली और आपने समझा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत लाभ हो रहा है, बहुत तो प्रशंसा की बात है, लेकिन साथ साथ निंदा की भी बात है, है? निंदा की बात, आप दूसरों को नहीं देना चाहिए, नहीं दूसरों को नहीं देना, दूसरों को दूसरे लोग जाएं नरक में, मुझे तो मिल गई गीता, मेरी तो रक्षा हो रही है, बाकी दूसरों को सड़ने दो इस संसार में, तो क्या है, ये निंदा की बात है, तो ये खल है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाल लिखते हैं आगे, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7:128, यद्यपि भारत के पास भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया, इसीलिए अब इस ज्ञान को यथारूप में बिना किसी विकार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। तो प्रभुपाद क्या करें कि भारतीय लोगों ने जो है इसको नहीं वितरित किया, इस ज्ञान को नहीं वितरित किया, है ना। तो अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो स्थापित हुआ है पूरे संसार में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, तो इसकी स्थापना हुई है कैसे, इसी ज्ञान को यथा रूप में बिना किसी विकार के, बिना किसी परिवर्तन के, वितरित करने के लिए। तो इसलिए इस आंदोलन में, हरे कृष्ण आंदोलन में, प्रभुपाद की जो भगवद गीता जो पहले अंग्रेजी में प्रभुपाद ने लिखी थी, भगवद गीता था रूप, अब उसका जो है विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और होता जा रहा है और होता जा रहा है। विश्व की जो है मतलब करीब करीब सभी भाषाओं में अनुवाद इसका हो रहा है या हो चुका है, हो रहा है, क्योंकि बहुत आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है इस ज्ञान की। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि इससे पूर्व भी भगवद गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुए हैं, किंतु इन प्रयासों में विकृति और संसारिक ज्ञान से समझौता किया जा रहा है। मतलब पहले भी गीता की पुस्तकों में वितरण हुआ भारत से बाहर भी, और कई विद्वानों ने गीता की टीकाएं लिखी, अंग्रेजी भाषा में लिखी और दूसरी भाषाओं में लिखी, लेकिन उसमें क्या हुआ, संदेश भगवान के संदेश को बदल दिया। और भगवान के संदेश को अगर बदल दिया तो आप दूसरों को दे रहे हैं तो उसका लाभ नहीं, या संसारी ज्ञान से समझौता कर लिया, संसारी ज्ञान भी उसमें घुसेड़ दिया, या तो अपने विचार उसमें डाल दिए भगवद गीता के ज्ञान में तो वो दूषित हो गया, या फिर दूसरों के विचार संसारी ज्ञान भी उसमें घुसेड़ दिया तो भी दूषित हो गया। तो अगर ऐसे आप भगवद गीता के ज्ञान को अगर आप वितरित करते भी हैं तो भी उससे लाभ नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ क्या कर रहा है, भगवद गीता के ज्ञान को यथारूप बिना किसी विकृति के, हाँ इसमें लिखा है कि भगवद गीता बिना किसी विकार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना हुई है। लेकिन अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवद गीता यथारूप का वितरण कर रहा है और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत की ओर जाग रहे हैं। इस ज्ञान भगवद गीता को पढ़कर के लोग कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, लोग कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, लोग कृष्ण को कृष्ण की शरण ले रहे हैं। जो दूसरी टीकाएं हैं जिन दूसरे विद्वानों ने लिखी हैं उसमें अपने विचार घुसेड़ दिए तो उससे क्या होता है कि कोई कृष्ण का भक्त नहीं बनता, कोई कृष्ण की शरण नहीं लेता। लेकिन चूंकि प्रभुपाद ने जो भगवद गीता यथारूप हमको दी है उसमें इस प्रकार से प्रभुपाद ने अनुवाद और तात्पर्य दिए हैं जिससे लोग कृष्ण की शरण ले रहे हैं, कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा अपितु तो मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। दोनों बातें, एक तो क्या है कि पूरे विश्व का लाभ है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमें मानवता की सेवा करनी है। अगर आपके दिमाग में ये विचार है कि आप मानवता की सेवा करना चाहते हैं, मानव मात्र की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवद गीता के वितरण से बढ़कर के मानव मात्र की और कोई सेवा नहीं। आप सोचते हैं कि मानवता की सेवा यही है कि भाई भोजन बांटो या कपड़ा बांटो या दवाई बांटो, ठीक है ये भी सेवा है, लेकिन ये सेवा स्थायी नहीं है, क्योंकि जिनके कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार अगर वे दुख पा रहे हैं तो आप उनको कुछ अगर उनका दुख दूर करते हैं, दवाई बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, तो कुछ समय के लिए हो जाएगा, लेकिन फिर उनके कर्म के अनुसार वो दुख उनको मिलेंगे ही। लेकिन भगवद गीता अगर आपने दी, भगवान का संदेश दिया, तो इससे उनका जो है जन्म जन्म के दुख मिट जाएंगे, तो भगवान का संदेश उनको मिल जाता है कि मेरी शरण में आओ। तो संसार में ना रह करके शरीर छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, जहाँ जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी कोई कष्ट नहीं, भगवान के साथ रह करके भगवान की सेवा करें तो कोई कष्ट नहीं। तो मानवता की सेवा, अगर सच्ची मानवता की सेवा, असली अगर मानवता की सेवा है, स्थाई मानवता की सेवा अगर आप सोचते हैं कि भाई आपको करना है, तो भगवत गीता यथारूप का आप वितरण करिए पूरे संसार में। अच्छा, दूसरे कुछ लोग सोचते हैं कि भारत की कीर्ति बढ़ाएं, हम भारत की कीर्ति बढ़ाएं, हमें और कुछ हमें और किसी काम से मतलब नहीं है, हम भारत की कीर्ति बढ़ाना चाहें, हम भारत का नाम करना चाहते हैं। तो अगर भारत का नाम करना चाहते हैं तो भी आप पूरे संसार में भगवद्गीता यथारूप का वितरण करो, तो भारत का नाम अपने आप फैले। आप भारत का नाम अगर फैलाना चाहते हैं तो भी है ना। तो प्रभुपाद ने जो काम किया है वो ये काम किया है, पूरे विश्व का भी उसमें कल्याण किया है और भारत का नाम भी फैलाया भगवत गीता यथारूप दे करके। जब विदेशों में प्रभुपाद गए, इंग्लैंड में गए प्रभुपाद, और किसी ने पूछा, किसी रिपोर्टर ने पूछा, प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, भारत छोड़ करके आप यहाँ पर क्यों आए, तो प्रभुपाद के पास तो बहुत से उत्तर थे, लेकिन उस समय प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आप लोग भारत में आए थे तो भारत की जितनी संपत्ति है वो सब उठा करके ले गए, भारत की जितनी संपत्ति सब उठा करके ले गए, लेकिन भारत की एक संपत्ति जो असली संपत्ति है उसको आपने छोड़ दिया, वो मैं देने आया हूँ आपको। ये क्या है भगवत उसी समय लाइट भी चली प्रकाश तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया है ना कि भारत में जो असली संपत्ति थी वो तो तुमने जो है ली नहीं, और बाकी जो है नकली संपत्ति बटोरते रहे और बटोर करके ले आए, लेकिन जो तुमने छोड़ दिया है वो मैं देने आया हूँ तुमको, है ना। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद ने भारत का नाम भी फैलाया, संसार का भी लाभ किया और भारत का भी नाम फैलाया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर बंदी बनाने का प्रयास किया। कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर बंदी, वैसे देखा जाए कृष्ण भावनामृत की बात कहाँ से आ गई, उसने तो देवकी को अपने घर में बंदी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन आखिर है तो तत्व जो तत्व है वो कृष्ण भावनामृत का ही तो तत्व है, कि कोई कृष्ण को ना जाने, कोई कृष्ण की शरण ना ले और कृष्ण की हत्या मैं कर दूं, कृष्ण की मैं हत्या कर दूं, कृष्ण नहीं रहेंगे, ना कृष्ण भावनामृत रहेगा, ना कोई कृष्ण का भक्त बनेगा, मैं कृष्ण को ही खत्म कर दूं। तो कंस ने जो है इस भाव से किया गया था, देवकी को अपने कारागार में बंदी बनाया था कृष्ण को खत्म करने के लिए, है ना। तो वो उसी प्रकार से है जैसे कोई कृष्ण भावनामृत को खत्म करना चाहता है, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया, कंस का विनाश हो गया, क्योंकि उसने कृष्ण का विनाश करने का प्रयास किया तो उसका ही विनाश हो गया, है ना। तो जो लोग जो है कृष्ण भावनामृत की रक्षा करना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत को फैलाना चाहते हैं, तो उनकी रक्षा होगी और उनका ऐश्वर्य बढ़ेगा। सिद्धांत तो वही है, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को नष्ट करना चाहता है और कृष्ण को नष्ट करना चाहता है या कृष्ण भावनामृत को नष्ट करना चाहता है तो वही नष्ट हो जाता है, वो स्वयं नष्ट हो जाता है। तो उल्टा भी तो है इसका, कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावनामृत को फैलाना चाहता है और कृष्ण भावनामृत की रक्षा करना चाहता है तो उसकी रक्षा भी होगी और उसका भी ऐश्वर्य बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इसी तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा भगवद गीता के असली ज्ञान का गला घोंटा जा रहा था। दुराग्रही नेताओं का एक दुराग्रह है, अपना दुराग्रह, जो भारतीय नेता हैं उनका अपना एक दुराग्रह होता है, अपना एक व्यक्तिगत दुराग्रह है। दुराग्रह का मतलब क्या होता है, किसी गलत बात को आप पकड़ लेते हैं और उसमें जिद करते हैं, आप गलत बात है उसको आपने पकड़ लिया है उसी में आप जो है जिद बना लेते हैं अपनी। तो उसको कोई दुराग्रह कहते हैं। तो भारतीय नेताओं का दुराग्रह था कि भगवद गीता के असली ज्ञान का गला घोंट रहे थे और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति और भगवत ज्ञान नष्ट हो रहा था, है ना। लेकिन होता क्या है, तो ऐसे नेताओं का कभी भी कल्याण नहीं होगा। अब कोई हो सकता है जाने या ना जाने, लेकिन वे कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे, है ना। उनको मनुष्य का जीवन भी नहीं मिलेगा। कोई भारतीय नेता, उनके बारे में किसी ज्योतिष ने बताया कि वो स्वीडन में कुत्ता बन गए, कुत्ते का शरीर मिल गया। किसी को बताया वो नेता थे और उनको जो है मल का कीड़ा वो बने, अगले जीवन मल का कीड़ा बन गए। तो ये हाल, तो फायदा क्या है। ऐसे बड़े बड़े नेता अगर बन जाए हम और जनता की नज़रों में बहुत कीर्ति पालें, बहुत नाम पालें, या अगले जन्म में मल का कीड़ा बनना पड़ेगा। और वो कितने जन्मों तक, हजारों सालों तक वो मल का कीड़ा ही बनता रहे, क्या क्या फायदा है, है ना। तो जो भगवद गीता के ज्ञान का गला घोंटे और नेता हो करके, कोई नेता है, अगर कोई नेता है तो उसका तो बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि वो जो कुछ बोलता है हजारों लोग उसी की बात सुनते हैं, उसी की बात का समर्थन करते हैं। तो कोई नेता होकर के अगर भगवद गीता का समर्थन करे तो उसी से ही जो है सामान्य जनता क्या करेगी, समर्थन करेगी और गीता का जो है अध्ययन करेगी। यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोचना, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य लोग वैसे ही आचरण करते हैं। तो वे जो नेता हैं अपने दुराग्रह के कारण भगवद गीता का गला घोंट रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु अब कृष्ण भावनामृत के प्रसार के साथ ही भगवद गीता का सही उपयोग होने लगा है। अब कृष्ण भावनामृत का जो प्रसार है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के द्वारा जो हो रहा है, तो भगवद गीता का सही उपयोग हो रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में एक बहुत बड़ी आवश्यकता प्रकट हो रही है, बहुत बड़ी आवश्यकता प्रकट हो रही है। प्रभुपाद के तात्पर्य में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की जो है चर्चा आ गई कि हम लोगों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संपूर्ण विश्व में गीता का ज्ञान देना, है ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इस संपूर्ण विश्व में अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपने सर्कल में दीजिए। जारे देखा, यहाँ बताया जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जारे देखा का मतलब जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो। जिसको देखो का मतलब ये भी है कि आप नहीं पहचानते हैं, आप देखते हैं किसी को तो भी आप करो। तो जो भक्त हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के जो भक्त हैं, जिसको देखते हैं वो कृष्ण का उपदेश देते हैं। और कैसे देते हैं, भगवद गीता प्रभुपाद की जो भगवद गीता है वो वैसे ही देते हैं, ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, हाथ जो है अपने हाथ में गीता को लेकर के और उनको देते हैं। तो जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु जब ये उपदेश दिया था कि जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो, तो उपदेश कहने की बात थी। चैतन्य महाप्रभु ने उस समय ये नहीं कहा कि भगवद गीता की पुस्तक दो, क्यों, क्योंकि उस समय भगवद गीता की छपाई नहीं होती थी, उस समय पुस्तकों की छपाई होती नहीं थी, तो बोलने की आवश्यकता थी। लेकिन चूंकि अब मशीनों के द्वारा किताबों की छपाई हो रही है, पहले किताबों की छपाई नहीं होती थी, तो किताबें कैसी होती थी, हाथ से लिखी जाती थी। अब सोचिए इतनी बड़ी किताब अगर कोई व्यक्ति हाथ से लिखे तो कितने साल लगेंगे लिखने में, और इतने छोटे अक्षर तो हाथ से लिखे नहीं जा सकते। उस समय कलम से लिखना पड़ता था, पेन भी नहीं था, कलम से लिखना पड़ता था। तो सोचिए इतनी बड़ी किताब के लिए इतना बड़ा जो है बंडल बनेगा, और फिर बाइंडिंग भी नहीं होती थी, लूज पेपर होते थे, तो लूज पेपर जो है एक एक करके रखे जाते थे। तो अब पुस्तक वितरण का तो कोई सवाल ही नहीं, एक किताब कोई लिखे तो कई साल लग जाएंगे, और फिर किसी एक व्यक्ति को अगर दे दिया आपने तो इसमें क्या मतलब कुछ परिणाम नहीं है, किताब वितरण करने की कोई बात ही नहीं। लेकिन अभी क्या है, लाखों करोड़ों की संख्या में किताबें एक बार में छप जाती। भाई 50 लाख गीता छाप दो, बस ऑर्डर दे दिया, 50 लाख गीता छप करके आ गई। तो ऐसे में हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने समय स्थान परिस्थिति के अनुसार इस संदेश को फिर बदला। अब जारे देखा तारे कहो, जहां कहा कहो तो वहां पर आप क्या समझिए, जारे देखा तारे कहो यानी यहां दे दो कृष्ण उपदेश, तो कृष्ण की पुस्तक भगवद गीता की पुस्तक दे दो। तो ये भी कहने की तरह है और इसमें आपका समय बच जाता है, आपको कहना नहीं पड़ता है और भगवद गीता की पुस्तक आपने उसको दे दी। अगर आप उसको कहें तो उसके पास सुनने का समय नहीं है, वो रास्ते में जा रहा है, आप कह भी नहीं सकते, उसको रोक भी नहीं सकते और वो रोकना भी नहीं चाहेगा, वो सुनना भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आपने पुस्तक दे दी, तो ये पुस्तक उसके हाथ में आ गई, उसके पास भगवद गीता का पूरा संदेश आ गया। अपनी सुविधा के अनुसार वो जब चाहे तब खोलेगा और जहाँ से चाहे वहाँ पढ़ेगा और जहाँ चाहे वहाँ बंद कर देगा। तो आपने कितना बड़ा काम किया। इसलिए जो हमारे आचार्य हैं, ये पुस्तक वितरण को बहुत महत्व देते हैं। अब पुस्तकों की छपाई हो रही है और उसमें माया का जितना समाचार है वो भरा पड़ा है और इस तरह से लोगों की चेतना दूषित हो रही है। तो पहले से ही माया का प्रचार हो ही रहा है, माया का संदेश फैलाया जा रहा है पुस्तकों के माध्यम से। इसलिए भी बहुत आवश्यकता है कि हमें कृष्ण का संदेश पुस्तकों के माध्यम से फैलाना बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये जो समय है भगवद गीता के वितरण का, इसमें आप लोगों में से कई भक्त जो बैठे हैं वो किसी न किसी मंदिर के भक्त से जुड़े हैं, जो कि भगवद गीता लेते हैं और वितरण करते हैं, फिर पैसा लाते हैं, पैसा जमा करते हैं, फिर और गीता लेते हैं। इस तरह से कई भक्तों ने आपके बीच में ही जो बैठे हुए हैं, किसी ने 1000 गीता का कोटा लिया है, किसी ने 500 गीता का कोटा लिया है, किसी ने 100 गीता का कोटा लिया है, तो किसी न किसी से जुड़े हुए हैं भक्त लोग। और वे लोग जो है गीता ले जाते हैं, पैसा तो शुरू में नहीं देते, या शुरू में देना चाहें दे भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दे सकते हैं तो भी गीता ले जाते हैं और गीता का वितरण करते हैं, फिर पैसा ला के जमा करते हैं, फिर और गीता ले जाते हैं। इस तरह से आप लोगों में से बहुत से भक्त हैं जो ये कार्य कर रहे हैं और यही जो है कार्य ऐसा है जिससे आप निंदा से बच सकते हैं। आपके पास गीता है ये तो प्रशंसा की बात है कि आपने गीता ली है, इसके लिए आप प्रशंसनीय है कि आपने गीता ली है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि से आप निंदा के भी पात्र हैं, हैं? आप निंदा के भी पात्र हैं, हैं? आप निंदनीय भी हैं। क्यों निंदनीय है कि आप जो है दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं या जिनसे नहीं भी जुड़े हैं, हाँ, उनको भी अगर आप गीता नहीं दे रहे हैं, पुस्तक नहीं दे रहे हैं, तो आप भी कैसे हैं, ज्ञान खल। जब गीता की पुस्तकें इतनी मात्रा में छप रही हैं, कि हमें वितरण करने का बहुत अवसर है कि हम वितरण करें। जैसे कि दिल्ली मंदिर का पिछले साल कितना हुआ था, 2 लाख 3 लाख जितना भी हो, 2-3 लाख का जो है मतलब था, कोटा था पिछले साल। तो इस साल भी जो है हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक गीता का वितरण हो। तो गीता है हमारे पास, बहुत गीता है हमारे पास, है ना। और अगर आप नहीं लेते, आप किसी भक्त से नहीं जुड़ते, अगर कोई नहीं जुड़ा है किसी भक्त से, तो हमसे भी ले सकते हैं आप गीता कि प्रभु जी गीता दीजिए, है ना, मैं गीता ले जाऊँगा, पैसा मैं बाद में दूंगा, आप गीता दीजिए, ठीक, गीता ले जाओ, पैसा बाद में दो। तो अगर आप नहीं जोड़ते किसी से तो क्या है, ये निंदा की बात है, ये निंदा की बात है। आज के श्लोक में जो बताया है कि निंदा की बात है। जैसे किसी व्यक्ति के पास आंखें हैं और वो देख रहा है, देख सकता है, वो देख रहा है एक अंधा व्यक्ति है जो कुएं की तरफ जा रहा है और वो कुएं में गिरने वाला है, और वो आंख वाला व्यक्ति जो देख रहा है और उसको नहीं बचाता, उसका हाथ नहीं पकड़ता, तो वो कैसा है? वो कैसा है? हाँ, दुष्ट है। कि वो देख रहा है कि अंधा व्यक्ति जा रहा है कुएं में, गिरने वाला है, और वो नहीं उसको बचाता, वो नहीं पकड़ता, तो वो जो है दुष्ट। तो इसी प्रकार से हमारी भी, ये हमारे लिए भी निंदा की बात है कि हम दूसरों को देख रहे हैं, हम जानते हैं नहीं भी जानते, ये भी जरूरी नहीं है कि आप जानते हैं तभी आप दें उसको, आप नहीं भी जानते हैं तो भी आप दीजिए। इसलिए हमारे आंदोलन के जो भक्त लोग हैं सड़कों में भी जाते हैं, सड़कों में भी गीता देते हैं और बहुत आग्रह करते हैं। कई बार तो भक्तों की निंदा की जाती है कि भक्त लोग जो है बहुत फोर्स करते हैं, भाई आपके मंदिर के जो भक्त हैं वो बहुत फोर्स करते हैं, तंग करते हैं, जिनको गीता नहीं लेनी है उनको भी कहते हैं ले लो, बहुत ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये उसी तरह की बात है कि अंधा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, और जा रहा है कुएं में, गिर रहा है। और जो आंख वाला व्यक्ति, अरे नहीं नहीं मत जाओ उधर, उधर कुआं है, तो झगड़ा करता है, झगड़ा होता है ना। तो किसके लिए निंदा, किसके लिए निंदा की बात है? जो अंधा व्यक्ति है जो बहस कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन जो व्यक्ति बचाना चाहता है और कहता है कि मत जाओ मत जाओ, उसी प्रकार से लोगों को आवश्यकता है, लोगों को भगवत गीता की आवश्यकता है, लेकिन वे नहीं जानते अपनी आवश्यकता, और वे कहते हैं मेरी आवश्यकता नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं गीता की, मुझे मत दो, और आप उसको फोर्स करते हैं कि ले लो ले लो ले लो, तो ये आपका गुण है, आपका दोष नहीं है। दोष तो उसी का है जो मना कर रहा है, आपका तो गुण है कि आप उसको दे रहे हैं, है ना। और कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास है गीता, आप उसको अगर गीता देते हैं और वो कहता है कि मेरे पास है गीता, तो क्या उत्तर है आपके पास? कोई उत्तर है? अगर आप उसको गीता दे, भाई गीता ले लो, कहते नहीं ये गीता तो मेरे पास है मैंने ली है, तो आपके पास कोई उत्तर है इसका? और बांटो और बांटो, केवल यही नहीं है कि भी आप सबको बांट रहे हैं, बल्कि आपके संपर्क में जो आता है उसको भी बोलो कि आप भी बांटो, आप भी बांटो, हर घर में जाए। भगवान कहते हैं नचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रीकृतमः, मनुष्यों में उससे बढ़कर के मेरा प्रिय कार्य करने वाला और कोई नहीं है, है ना। तो भगवान ने कहा है कि जो मेरे भक्त में, मेरे भक्त को इस ज्ञान का संदेश देता है, गीता का संदेश देता है, भगवान कहते हैं याइमं परमं गुह्यं मत भक्तेषु विधास्यति, मेरे भक्तों में इस ज्ञान का जो वितरण करता है, भगवान ने ये कहा मेरे भक्तों में ज्ञान का वितरण करता है, तो फिर हमारा तो फिर काम बंद हो जाएगा, अभी तो कोई भक्त नहीं है, हम फिर गीता की किताब क्यों बांट रहे हैं? लेकिन भगवान ने गीता में जो कहा है मेरे भक्तों में जो ज्ञान का उपदेश देता है, तो भक्तों को ज्ञान का उपदेश देना तो वो अलग बात है, लेकिन जो भक्त नहीं है हम उनको ज्ञान का उपदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम भगवद गीता की पुस्तक दे रहे हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहता है तो हम उसको ज्ञान का उपदेश नहीं दे रहे हैं, ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए जो नहीं सुनना चाहता, जो भक्त नहीं है आप ज्ञान का उपदेश मत दीजिए। लेकिन पुस्तक अगर आप दे रहे हैं तो पुस्तक आप दे सकते हैं, क्योंकि पुस्तक उसके हाथ में आ जाएगी तो उसकी जब इच्छा होगी तो वो पढ़ेगा, जब इच्छा नहीं होगी तो नहीं पढ़ेगा, तो इसमें कोई अपराध नहीं होगा, तो पुस्तक देने में कोई अपराध नहीं होता। और प्रभुपाद की जो दूसरे ग्रंथ हैं, प्रभुपाद ने जो दूसरे पुस्तकें लिखी हैं जो कि दूसरे दूसरे नाम से हैं, जैसे कि योग की पूर्णता, श्री कृष्ण की ओर, प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षाएँ, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, बहुत सी किताबें हैं, वे भी भगवत गीता पर ही आधारित हैं, उनको भी बांटा जा सकता है, उनको भी बांटा जा सकता है। लेकिन भगवत गीता यथारूप इसका इसलिए ज्यादा महत्व है क्योंकि इसमें भगवत गीता के श्लोक दे करके प्रभुपाद ने उनका शब्दार्थ किया, अनुवाद किया, तात्पर्य किया, जिससे कि लोग समझे कि भगवत गीता में भगवान ने भी ये बात कही है, तो ये जो है भगवान का संदेश है। क्योंकि भगवत गीता की जो गलत व्याख्याएं हो गई हैं उससे जो लोगों के दिमाग में गलत विचार घुस गए हैं, जो मायावादी विचार घुस गए हैं लोगों के दिमाग में, तो उनको दूर करने के लिए कि भगवत गीता में भगवान ने ये बात नहीं कही है, भगवत गीता में भगवान ने तो अपनी शरण लेने की बात कही है और हम लोग उनके दास हैं, हम लोग उनके सेवक हैं, हम लोग भगवान नहीं हैं, तो ये विचार जो है स्थापित करने के लिए भगवत गीता यथारूप की बहुत आवश्यकता है। इसलिए भगवत गीता पर हम बहुत जोर देते हैं क्योंकि श्लोक श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ, फिर अनुवाद, फिर तात्पर्य जो प्रभुपाद ने दिया है, इससे जो है भगवान के संदेश को जो है यथारूप में समझने में सहायता मिलती है। जो दूसरे विद्वान है उन्होंने इस तरह से नहीं किया, एक एक श्लोक का अर्थ नहीं दिया, एक एक शब्द का अर्थ नहीं दिया और उन्होंने अपनी अपनी बातें घुसेड़ दी गीता के श्लोक में, उनके अनुवाद में, उनकी व्याख्या में अपनी अपनी बातें घुसेड़ दी हैं, तो लोग जो है सोच रहे हैं कि हाँ भगवान ने यही बोला होगा, तो वो उन टीकाओं ने जो है मानव समाज का सबसे बड़ा नुकसान किया। अब उस नुकसान को जो है दूर करने के लिए और राहत देने के लिए भगवत गीता यथारूप की बहुत आवश्यकता है कि भगवान ने जो कहा है वो ये नहीं कहा कि हम भी भगवान हैं या हम भगवान बन जाएंगे या हम शून्य बन जाएंगे, हम निराकार बन जाएंगे, भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा है कि मेरी शरण में आओ और मेरा धाम है वहाँ पर तुम आकर के रहोगे तो मेरी सेवा करोगे। कोई निराकार जैसी चीज़ नहीं है, जैसे हम इस संसार में माया की सेवा कर रहे हैं, एक दूसरा संसार है जहाँ हम भगवान की सेवा करते हैं और वहाँ पर कोई जन्म और मरण नहीं होता, शरीर होता है, शरीर होता है लेकिन जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी नहीं होता, लेकिन शरीर होता है। ये सोचना ये भगवत गीता यथारूप से मिलती है। लेकिन जितने निराकारवादी हैं वो ये कहेंगे अगर शरीर है तो जन्म मरण है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का धाम ऐसा है जहाँ पर शरीर है लेकिन जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी नहीं है। अब ये बात उनके दिमाग में घुसती नहीं, लेकिन भगवत गीता यथारूप में भगवान का जो संदेश है वो यही है कि भौतिक शरीर है इसमें जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी है, लेकिन भगवान का जैसा आध्यात्मिक शरीर है वैसा हमें भी शरीर मिलेगा, उसमें आध्यात्मिक शरीर में सब कुछ है, हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, सब कुछ है और सब कार्य होते हैं, देखने के, सुनने के, चलने फिरने के सब काम होते हैं, लेकिन क्या नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, ये नहीं है। तो भगवान का संदेश है, तो इसलिए भगवत गीता यथारूप को वितरण करने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों की ओर से अब कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं, अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि वो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है और हमारे उस शरीर में इंद्रियां भी हैं, तो मूल रूप से हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है और हमारे जो इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, ये भगवान की सेवा के लिए हैं, और जब हम भगवान की सेवा छोड़ करके जब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है और जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम उनसे कार्य नहीं लेते हैं तो संकुचित हो जाते हैं। तो भगवान की सेवा अगर हम नहीं करते उन उस शरीर से और इंद्रियों से तो वो संकुचित हो जाता है। अब वो संकुचित हो गया है, कितना छोटा हो गया है, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर हो गया है, आप समझे। अब वो इंद्रियां जो है हमारे पास नहीं रही, तो हमारे भौतिक इंद्रियां हमें प्राप्त हुई हैं जिनसे हम माया की सेवा कर रहे हैं। अब विधि यही है कि हम माया की सेवा छोड़ करके अगर हम भगवान की सेवा शुरू कर देते हैं तो हमारा वो आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक इंद्रियां विकसित होने लगती हैं। तो वही आध्यात्मिक शरीर इंद्रियां हमारे साथ हैं लेकिन वो संकुचित हैं, वही विकसित होने लगती हैं। जब विकसित हो जाती हैं आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक इंद्रियां, तो फिर हमें ये भौतिक शरीर और भौतिक इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम शरीर छोड़ करके फिर भौतिक शरीर और भौतिक इंद्रियां नहीं प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, आप समझ रहे हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे कि किसी व्यक्ति का पैर टूट गया तो वो जो है लकड़ी के सहारे चलता है, लेकिन जब पैर उसका ठीक हो जाता है तो लकड़ी अगर अपने हाथ में पकड़े हुए है तो पकड़े हुए रह सकता है, लेकिन जब चाहे तो उसको फेंक देगा और वो जो है बिना लकड़ी के चलेगा, क्योंकि उसका पैर ठीक हो चुका है। उसी प्रकार से जब हमारा आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक इंद्रियां विकसित हो जाती हैं तो ये भौतिक शरीर जब रहता भी है, जब तक रहता है तब तक वो रहता है, लेकिन जैसे शरीर छोड़ देता है तो वो भगवान के धाम में चला जाता है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, उसको भौतिक शरीर भौतिक इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, कृष्ण पुरुष है, परम पुरुष है, भगवान है। और कृष्ण भावना मृत का मतलब है कि कृष्ण भावना का जो है चेतना, हमारी चेतना जो है वो कृष्ण भावना भावित होती है, तो कृष्ण भावना मृत उसे बोलते हैं। चेतना की एक अवस्था है कृष्ण भावना मृत, कि हम जो है कृष्ण का ही हमेशा चिंतन करते हैं, तो वो चेतना की स्थिति है। और कृष्ण एक पुरुष है जिनके प्रति हमारी जब भावना हो जाती है कि हमें उनकी सेवा करनी है, तो ये भावना कृष्ण भावना मृत कहलाती है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी माता जी। जोर से बोली, जोर से, और आगे आइए, हैंड माइक नहीं यहाँ पर। लोग कहते हैं कि हमारे पास गीता है, कहाँ की गीता है, कहते गीता प्रेस गोरखपुर, वहाँ की गीता है। देखिए आपके पास जो है एक उत्तर ये है, गीता में भगवान ने कहा कि परंपरा के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है ना, परंपरा, जो गुरु परंपरा जो भगवान से प्रारंभ हुई है, गुरु परंपरा, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो जिनकी भगवद गीता आपके पास है उसमें क्या कोई गुरु परंपरा है? नहीं है, लेकिन इसमें गुरु परंपरा है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने, है ना, इस तरह से जो है परंपरा है। तो ये परंपरा के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, एक उत्तर तो ये है, ठीक है ना। तो आप जब बताएंगे यथारूप है, ये भगवद गीता यथारूप है, इसमें भगवान का संदेश ज्यों का त्यों है, क्योंकि परंपरा के द्वारा आया है, एक उत्तर तो ये है। दूसरा उत्तर ये है कि दूसरी जो गीता है, भगवान तो कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, लेकिन दूसरी गीता को पढ़कर के कौन भक्त बन रहा है, कौन भगवान की शरण ले रहा है? नहीं, इस गीता के द्वारा पूरी दुनिया में लोग कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, आप समझे। इस हरे कृष्ण आंदोलन में जितने भक्त हैं, चाहे मैं हूँ या और भी कोई दूसरे भक्त हों, 90% भक्त प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ करके ही बने। मुझे भी एक पुस्तक योग की पूर्णता मिली थी, वो रद्दी में मिली थी। हमारा एक भाई था, जिनकी दुकान थी पंसारी की, तो पंसारी के यहाँ जो है रद्दी के कुछ कागज आते हैं या किताबें आती हैं, तो उसके पास योग की पूर्णता प्रभुपाद की लिखी हुई वो मिली थी, उसने मुझे ला करके दी। उसी से फिर मैंने बम्बई में जो है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट को चिट्ठी लिखी, उन्होंने सूची पत्र भेजा और फिर पुस्तकों की जो है उसमें कीमत लिखी हुई थी, तो मैं 5-5 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था और 2-3 किताबें इस प्रकार से मंगाता रहा। तो इस तरह से कितने भक्त हैं, 90% भक्त हैं जो प्रभुपाद की पुस्तकों के द्वारा ही भक्त बने हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है भगवद गीता का वितरण करिए, अगर नहीं करेंगे तो आपकी निंदा उसी प्रकार से होगी जैसे यहाँ पर हुई है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय।
सीता मित्र प्रभु की जय।